नमस्कार सोतो, छिंदवाड़ा वालेन से आपका दोस्त योगेश। आज की सबसे बड़ी समस्या जल है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों को कई किलोमीटर तक अपनी प्यास बुझाने के लिए जाना पड़ता है। जल संरक्षण को लेकर कितने प्रयास करेगा और एक आम इंसान को जल संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए। जिस तरीके से जल संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए जाते हैं, वृक्षारोपण, वृक्षों का संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जाते हैं, परंतु अब तक वे पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज ग्रीष्म ऋतु में भी जल का भूगर्भीय जल स्तर निरंतर कम जा रहा है और इसके कारण कोई हमारी मूलभूत आवश्यकता ही सबसे प्रमुख चीज जल है। जल के बिना मानव जीवन की कल्पना करना भी की नहीं जा सकती है। आज हमारे साथ जल संरक्षण पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोशन गायकवाड़ जी, जो कि एक छात्र है, वे जुड़े हुए। रोशन भाई, मोबाइल आने पे स्वागत है आपका।
जी सर, नमस्ते।
रोशन भाई, जिस तरीके से जल संरक्षण को लेकर और जल संरक्षण की तैयारी को लेकर किस तरीके से अब तक लोग तैयार हो पा रहे हैं और जल संरक्षण क्या है, आप ये समझाइए।
जी सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हम जल के दो रूप होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। हाँ, प्राइमरी जल वैसे तो सभी जल का स्रोत वर्षा ही है। अगर हम प्राइमरी जल जो वर्षा का है और सेकेंडरी जल जो भूमिगत जल है, अगर हम सेकेंडरी जल का इस्तेमाल न ज्यादातर न करके अगर प्राइमरी जल का संरक्षण करें तो हमें जल की कभी कमी महसूस नहीं होंगी। तो इसके लिए जो भूमिगत जल है उसको ज्यादा इस्तेमाल न करके हम अगर वर्षा का जल को जितना हो सके उतना संरक्षित करें तो इसमें हमें जल की कभी कमी नहीं होगी। और हमारे जो सबसे ज्यादा तो हमारे जो किसान भाई लोग हैं उनके लिए जल की एकदम उनके लिए जल एकदम महत्वपूर्ण है। अगर यदि वह वर्षा के जल को अगर संरक्षित करके अपने अपने उपजाऊ फसल को उसमें प्रयोग करें तो उसके लिए उनके लिए बहुत लाभदायक होंगे।
क्या रोशन भाई, जिस तरीके से लगता नहीं कि जिस तरीके से सरकार द्वारा भी जलाशयों का निर्माण किया जाता है, छोटे मोटे डैम बनाए जाते हैं जल संरक्षण को लेकर, जिससे पृथ्वी का धरातल का वाटर लेवल जो है वो संतुलित आ सके, भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि हो सके, परंतु क्या ऐसा लगता नहीं है कि ये भी साधन अब तक पर्याप्त साबित नहीं हुए हैं? क्या लगता है आपको?
जो ये साधन पर्याप्त नहीं, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और जल की जो आपूर्ति उसमें कम है। हाँ जी
जी जी
और जल को हम अगर ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करें, सबसे पहले तो जल को संरक्षित करने के उपाय के बारे में सोचना चाहिए। जल को इस्तेमाल जितना हम करेंगे उतना संरक्षित करने की हमको आवश्यकता है। और सरकार भी इसके लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। जी
जी
और सरकार नहरों के माध्यम से जल आपूर्ति करा रही है। सरकार अलग अलग प्रयास चला रही है कि हमारे जल की आपूर्ति कभी न हो हमें, तो इसमें भी सरकार इसमें सहयोग करने के बजाय अगर हम भी जनता अगर इस सरकार का इस सहयोग में सहयोग करें तो हमें जल की कभी आपूर्ति नहीं होगी। और प्राकृतिक संसाधनों का भी हमें विदोहन नहीं करना चाहिए।
क्या कैसे देख रहे, ग्रामीण क्षेत्र हो या आपके शहरी क्षेत्र हो या अन्य कोई और क्षेत्र हो, जहाँ पर कई बार देखा जाता है कि जो नल में टोटियां जो लगी रहती है वो नहीं होती है, जिसके कारण बहुत सा जल व्यर्थ में चला जाता है, तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि टोटी लगाइए और जल का संरक्षण करिए ताकि आने वाले दिनों में जल स्रोतों में जल हो और जल का संरक्षण हो सके?
हाँ जी, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जल के जो टोटियां नहीं लगी रहती है तो उसमें जनता को जागृत करना चाहिए जल के प्रति। कभी कहीं कहीं उन्हें समझाना चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे जल की मात्रा बहुत है, लेकिन उन क्षेत्रों में जाकर देखिए कि जहाँ पे जल के लिए 100-200 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है, ऐसे उन्हें जागृत करना चाहिए और उन्हें जल के बारे महत्व के बारे में बताना चाहिए। इसके वजह से वह जल के संरक्षण के बारे में सोचेंगे।
क्या किस तरीके से देख रहे कि जल का संरक्षण में भूगर्भीय जलस्तर में कमी आ रही है। तो क्या जिस तरीके से अवैध उत्खनन हो रहा है, कई खदाने हैं जिसका भी अवैध उत्खनन हो रहा है, कई नदियों का अवैध उत्खनन हो रहा है, तो भूगर्भीय जलस्तर में जो भी नीचे जा रहा है, तो इन जो अवैध उत्खनन का कितना प्रभाव पड़ रहा है भूगर्भीय जलस्तर पर?
हाँ जी, इसमें बहुत प्रभाव पड़ रहा है। भूगर्भीय जल का जो इस्तेमाल है वो सबसे ज्यादा होता है हमारे देश में, और उत्खनन के माध्यम से जो जल स्तर घटता जा रहा है उसके वजह से हमें भविष्य में जल की जो कमी है वो बहुत मतलब इसकी संकट ऐसा संकट पैदा हो रहा है कि भविष्य में जल के वजह से अकाल पड़ेगा, ऐसा मतलब संकट पैदा हो रहा है जल भूमिगत जल का इस्तेमाल करने से। तो हमें जो उत्खनन है और भूमिगत जल, उसमें भूमिगत जल को इस्तेमाल इस्तेमाल इतना करना चाहिए कि उससे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति हो, ना कि हम उसका विदोहन करना चाहिए। जी सर, और जी सर,
सर, क्या जिस तरीके से वृक्षारोपण और वृक्षों का संरक्षण की बात की जाती है, बहुत बार देखा जाता है कि वृक्षारोपण हो रहा है लेकिन वृक्षारोपण पर संरक्षण की बात की जाए तो वो नहीं हो पाती है। वृक्षारोपण लगाओ वो तो बात ठीक है, लेकिन उसका संरक्षण करना भी आज के जीवन में बहुत जरूरी है, ताकि वर्षा का जल जो है तो वो वृक्ष को मिल सके। वृक्षों का संरक्षण होगा तो ही हमारे भूगर्भीय जल स्तर को स्तर में वृद्धि होगी। तो वृक्षारोपण के माध्यम से किस तरीके से भूगर्भीय जल के स्तर को बढ़ाया जा सकता है? और कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इसकी अकाल है, जल नहीं है, लोगों को भटकना पड़ रहा है, तो क्या किस तरीके की व्यवस्था की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में? और उन ग्रामीण लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको प्यास बुझे, इसलिए उनके क्षेत्र में क्या किया जाए कि उनको पानी उपलब्ध हो सके आने वाले जीवन में?
सर, वर्ष वन तो वैसे तो वन ही वर्षा कराते हैं, और वनों को बादलों को वन ही आकर्षित करते हैं। जिन क्षेत्रों में जल की कमी है उन क्षेत्रों में पेड़ लगाना चाहिए सबसे ज्यादा से ज्यादा, उनका संरक्षण करते रहना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि मतलब पेड़ों के प्रति लोग जागृत नहीं होते, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उन्हें उन सा जल संरक्षण पेड़ संरक्षण के बारे में उतना कुछ जानकारी नहीं होती, इसलिए हमें जानकारी देनी चाहिए कि पेड़ बादलों को आकर्षित करते हैं और वर्षा कराते हैं, और वैज्ञानिक नीति द्वारा भी उन्हें समझाना चाहिए कि कैसे पेड़ भूमिगत जल को संरक्षित करते हैं और पेड़ मिट्टी को बांध कर रखते हैं, तथा जल के जो विदोहन है उसको मतलब जल को संरक्षित करने में सबसे ज्यादा पेड़ों का ही महत्व है। इसलिए मैं ग्रामीण क्षेत्रों को यही संदेश देना चाहूंगा कि पेड़ों को सबसे ज्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का आधार ही पेड़ है, और पेड़ नहीं रहेंगे तो इंसान का मूलभूत जीवन ही नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है, और ग्रीन प्लैनेट तभी तक कहा जाएगा तब तक इस पृथ्वी पर पेड़ रहेंगे।
क्या सर आपके क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है? ऐसा कोई क्षेत्र आपके क्षेत्र में?
जी सर, हमारे गांव में पिछले साल ऐसा हुआ था। हमारे गांव में जल का एक माध्यम एक कुआ, जो सरकारी कुआ ही है, उसमें से ही सारे गांव को जल की आपूर्ति होती है। उसमें पिछले साल जल स्तर घट गया था, और लोगों को लाइन में लगकर एक एक बाल्टी लेकर अपने उसको चलाना पड़ा था सभी गांव को। तो उससे जल संरक्षण के बारे में लोगों को समझ में आया, और अब यह स्थिति है कि लोग जल का विधोन कम करते हैं और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
सर, आपके क्षेत्र में आंगनवाड़ी हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य विभाग हो, के यहाँ पर भी जल की व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं है? और स्वास्थ्य विभाग है तो स्वास्थ्य विभाग में मरीजों को क्या पर्याप्त प्यास बुझाने के लिए जल मिल रहा है? स्कूलों में बच्चों को मिल रहा है? क्या आंगनवाड़ी में पानी मिल रहा है बच्चों को? किस तरीके की स्थिति है आपके क्षेत्र में?
जी, हमारे क्षेत्र में वैसे बहुत अच्छी स्थिति है। हमारे क्षेत्र में आंगनवाड़ी में बच्चों को पानी पानी की कोई कमी नहीं होती, और जो सरकार जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें भी है, बच्चों को नल की व्यवस्था है और पानी उन्हें भरपूर मिलता है, और स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ मरीजों को भी पानी की व्यवस्था की गई है, और सभी जगह जल की व्यवस्था बराबर की है इस गवर्नमेंट ने।
जिस तरीके से जल संरक्षण की बात करते हैं हम, तो एक किसान जल संरक्षण को लेकर अपनी फसलों के सिंचाई करने के बाद भी एक जल संरक्षण में किस तरह सहभागी हो सकता है?
जैसे कि फसल के उगाने और काटने तक जल जल ही किसान के लिए महत्वपूर्ण एक साधन है। जल के बिना उसके फसलें भी नहीं उग सकती, और उसकी आय का साधन भी फसल ही है, खेती ही का है। तो इसके लिए वह किसान सिंचाई के मतलब जल
आप मुझे ये बताइए कि एक किसान जिस तरीके से सिंचाई करके, अन्य कोई साधन से सिंचाई करके जिस तरीके से फसल उगाती है, लेकिन वे भी ऐसी कुछ वैज्ञानिक पद्धति को यूज करके फसल उगाकर जल का संरक्षण कर सकते हैं, तो इसके क्या पर्याप्त है, और है तो क्या किसानों को अब तक इसके बारे में जानकारी है कि वे भी जल संरक्षण में इसी माध्यमों से सहभागी हो सकते हैं?
जी, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही बात कही थी कि हमारे जो किसान भाई है उनको वैज्ञानिक नीति के जरिए ही खेती करने के सुझाव, ऐसी योजनाएं लागू करने वाले हैं, और वैज्ञानिक तरीके से खेती अगर हम उगाएंगे और किसानों को, जैसे दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, दुनिया आगे जा रही है, वैसे ही हमें खेती में भी परिवर्तन करना चाहिए। खेती को अगर वैज्ञानिक तरीके से करें तो कम समय में ज्यादा उत्पादन मिलेगा, और जल की जो आवश्यकता होती है फसल को वो भी कम लगेंगे, और इससे जल संरक्षण रहेगा, और इससे जल ज्यादा फसलों को नहीं लगेगा, और इससे जल संरक्षण हो सकता है।
जैसे हम देखते हैं कई ग्रामीण क्षेत्र में वैज्ञानिक खेती की बात की जाती है, परंपरागत खेती को छोड़कर वैज्ञानिक खेती पर आए, पर वो किसान जल संरक्षण को लेकर जागरूक नहीं है। अगर उन्हें कुछ जानकारी मिलती भी है तो सरकार द्वारा जो भी सब्सिडी के माध्यम से या अन्य कोई माध्यम से उनके लिए भी इन योजनाओं का लाभ मिल सके, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर किसान तो है परंपरागत खेती कर रहे हैं जिनको वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी नहीं है, और अगर कोई किसान को जानकारी भी हो तो उन्हें सरकार द्वारा कोई सब्सिडी के माध्यम से या अन्य कोई माध्यम से अगर उन्हें वैज्ञानिक खेती के संसाधन उपलब्ध हो जाए तो वे भी जल संरक्षण में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसको किस तरीके देखते हैं आप?
किसान को सबसे ज्यादा तो आधुनिकरण की समाज में, इस समय में, आधुनिकरण के समय में किसान को वैज्ञानिक खेती उसके लिए फायदेमंद है। कम समय में उसको ज्यादा उत्पन्न होता है, और पारंपरिक खेती करने से अच्छा है कि वो मिट्टी परीक्षण करे। सबसे पहले कोई मिट्टी किसी फसल को सपोर्ट करती है, कोई दूसरी मिट्टी किसी फसल को सपोर्ट करती है, एक मिट्टी बराबर समान नहीं होती है। तो वह पारंपरिक खेती न करे और वैज्ञानिक खेती करे तो उसे ज्यादा फायदा होगा, और जो किसान मतलब सरकार बताते हैं कि जन संरक्षण करना चाहिए और किसान कोई अनसुना कर देता है, तो उसके पास जल की मात्रा होती है, बहुत मात्रा होती है, और किसी किसान के पास जल की कमी मात्रा होती है, वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है कि जल को संरक्षित क्यों करना क्यों आवश्यक है। तो जो किसान है जिसके पास भरपूर जल है, जैसे कि बड़े किसान, उनके पास भरपूर जल भरपूर साधन है, लेकिन छोटे किसानों के पास उस तरह के साधन नहीं होते हैं। अगर बड़े किसानों को इस तरह के जागरूक किया जाए कि जन संरक्षण के बारे में बताना चाहिए, और बड़े किसान सरकार से सीधे संपर्क में रहते हैं, इसलिए उन्हें वैज्ञानिक खेतियों के बारे में पता रहता है और उन्नत होते हैं, और छोटे किसानों को इसके बारे में पता नहीं रहता, तो उनको यह पता कराने के लिए साधन उपलब्ध कराने चाहिए। वैसे सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है कि छोटे किसान भी आगे खुलकर आए और अपना सहयोग इस राष्ट्र के निर्माण में दे, किंतु उनके पास पर्याप्त साधन किसी किसी कारण से कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं। तो उन्हें भी अगर हम अपने स्तर पर कोशिश करें कि वह वैज्ञानिक खेती करें, उनके बारे में बताया, हमारे पास जानकारी है, तो यह संभव हो सकता है कि वह वैज्ञानिक खेती द्वारा और जल संरक्षण के बारे में सोचे, और जो बड़े किसान हैं उन्हें भी जल संरक्षण करना चाहिए। मैं उन्हें यही सुझाव दूंगा कि भविष्य में अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर वह जल देना चाहते हैं तो जल संरक्षण करें। प्रकृति का यह अमूल्य वरदान को हमें बचाना चाहिए।
जी, आपने मृदा परीक्षण की बात की, आपके क्षेत्र में मृदा परीक्षण केंद्र प्रयोगशाला कितनी है और क्या आपके क्षेत्र के किसान क्या मृदा परीक्षण करते हैं?
जी, इस तरह मृदा परीक्षण तो हाँ, जैसे कि जो हमारा क्षेत्र है आजू बाजू का, वैसे जितने गांव है उसमें कुछ 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 ही किसान है जो मिट्टी परीक्षण करते हैं, पूरे किसान मिट्टी परीक्षण नहीं करते, और हमारे यहाँ ऐसी सुविधा नहीं है।
आप शासन से क्या मांग करना चाहोगे कि आपके क्षेत्र में भी कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि किसान वैज्ञानिक खेती की ओर अग्रसर हो सके?
हाँ जी, मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसे मिट्टी परीक्षण और किसान किसान के लिए ऐसे केंद्र स्थापित करने चाहिए कि उन्हें वैज्ञानिक खेती के बारे में पता चले और वे आगे से आगे बढ़े। दुनिया तेजी से आगे बढ़े तो उन्हें भी उसी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। और सरकार छोटा गांव या शहर कोई भी हो, लेकिन गांव की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे देश को गांव का देश कहा जाता है। तो हमारे जो फसल, हमारे जो वैज्ञानिक है उन्हें सरकार द्वारा मतलब यहाँ पे केंद्र स्थापित करना चाहिए ताकि वे भी उन्नत हो और आगे बढ़े और खुलकर खुलकर सामने आए। जी, हमारे यहाँ
जी, तो ये थे रोशन जी गायकवाड़, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से जल संरक्षण हो, भूगर्भीय जलस्तर हो, या जिस तरीके से अवैध उत्खनन हो, या फिर वृक्षों की उपयोगिता, जल संरक्षण में किसान किस तरीके से जल संरक्षण के लिए योगदान दे सकता है, इन सभी मुद्दों पर मोबाइल वाणी के साथ रोशन जी ने जानकारी साझा की। रोशन जी, मोबाइल वाणी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी, धन्यवाद सर।
छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश।